का था, रूह वही रूप नया।
दिलेर मुजरिम के भाग एक में आपने सुना कि डॉक्टर शौकत के बदले गलती से सविता देवी को कत्ल कर दिया गया और ये जानकारी इंस्पेक्टर फरीदी ने दी। आखिरकार वो नेपाली आदमी कौन था जो डॉक्टर शौकत को धमकी देकर गया था? क्या वाकई उस नेपाली आदमी ने ही सविता देवी को मारा होगा? रात 10 बजे का वादा कर फरीदी आखिर कहां गया था? इन सारे राज से पर्दा उठाने के लिए सुनिए भाग दो।
क्यों भाई, कहो कैसा केस है? फरीदी ने सिगार सुलगाकर सार्जेंट हमीद की तरफ झुकते हुए कहा। मेरे ख्याल से तो ऐसा दिलचस्प केस बहुत दिनों के बाद हाथ में आया है। आप तो दिन रात केसों के ही ख्वाब देखा करते हैं, कुछ हसीन दुनिया की तरफ भी नजरें दौड़ाइए, हमीद बेजारी से बोला। तो इसका मतलब यह है कि तुम इसमें दिलचस्पी न लोगे? बस मुझे तो माफ ही रखिए, मैंने सैर सपाटे के लिए एक महीने की छुट्टी ली थी, मुझे अपनी छुट्टियां बर्बाद नहीं करनी। बेकारी में तुम्हारा दिल ना घबराएगा? हाँ, बेकारी कैसी? क्या आपको मालूम नहीं कि मैंने अभी हाल ही में एक इश्क किया है? हमीद जल्दी से बोला। एक? अगर इसकी तफ्तीश के दौरान कई इश्क हो जाएं तो बुरा क्या है? फरीदी ने हंसकर कहा। शायद आपका इशारा डॉक्टर शौकत की नौजवान नौकरानी की तरफ है। माफ कीजिए, मेरा कैरेक्टर इतना भी गिरा हुआ नहीं है, हमीद मुंह बनाकर बोला। अरे यार, बड़े गधे हो तुम, मुझे तो उसका ख्याल भी ना आया था, फरीदी ने सिगार मुंह से निकाल कर कहा। खैर हटाओ, कोई और बात करते हैं। हाँ भाई, सुना है कि 2-3 दिन हुए रेलवे ग्राउंड पर सर्कस आया हुआ है, बड़ी तारीफ सुनी है, चलो आज सर्कस देखें। अब सिर्फ 4:30 ही तो बजे हैं, खेल तो 7 बजे शुरू होगा, इतनी देर में हम लोग खाना भी खा लेंगे। अरे क्या बदपरहेजी करने जा रहे हैं, लाहौल वाला आप और ये बेकार के शौक, यकीन नहीं आता। क्या आपने जासूसी से तौबा कर ली है? हमीद ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा। तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं वहां बेमतलब जा रहा हूं? तुम देखोगे कि जासूसी की कैसे जाती है, फरीदी ने जवाब दिया। माफ कीजिएगा, इस वक्त तो आप किसी 40 रुपए वाले जासूसी नॉवल के जासूस की तरह बोल रहे हैं, हमीद बोला। तुमने तो सर्कस का विज्ञापन देखा होगा, भला बताओ उसमें किस खेल की ज्यादा तारीफ की गई है? अरे है कोई एक नेपाली मौत के खंजर का खेल। क्या मतलब, हमीद ने जवाब दिया। फरीदी ने इसके सवाल को टालते हुए कहा। अच्छा तो इस खेल में है क्या, तुम तो शायद एक बार देख भी आए हो ना? हाँ, एक लड़की लकड़ी के तख्ते से लगकर खड़ी हो जाती है और नेपाली इस तरह खंजर फेंकता है कि वे उसके चारों तरफ लकड़ी के तख्ते में चुभते जाते हैं। आखिर में जब वो इन खंजरों के बीच से निकलती है तो लकड़ी के तख्ते पर चुभे हुए खंजरों में उसका एक खाका सा बना रह जाता है। भाई वाकई कमाल है, एक खंजर 1 इंच भी आगे पीछे बढ़कर पड़े तो लड़की का तो काम तमाम हो जाए। अच्छा इन खंजरों की लंबाई क्या होगी, फरीदी ने सिगार का कश लेते हुए कहा। मेरे ख्याल से ये खंजर वैसे ही हैं जैसा कि आपने लाश के सीने से निकाला था। बहुत खूब। अच्छा तो ये बताओ कि खंजर का कितना हिस्सा लकड़ी के तख्ते में घुस जाता है, फरीदी ने इत्मीनान से पूछा। मेरा ख्याल है कि 1/4। मामूली ताकत वाले के बस का रोग नहीं है। अच्छा मेरे दोस्त, आज सर्कस जरूर देखा जाएगा, फरीदी ने हमीद की पीठ ठोकते हुए जोश में कहा। आखिर आपका मतलब क्या है, हमीद बेचैनी से बोला।
अभी तो फिलहाल कोई खास मतलब नहीं है,
अभी तो मेरी स्कीम किसी 40 रुपए वाले नॉवल के जासूस की सी ही स्कीम मालूम हो रही है ना। आगे अल्लाह मालिक है। अरे आखिर कुछ तो बताइए, शायद सविता देवी के कत्ल में उसी नेपाली का हाथ हो। अरे अब यूं तो कत्ल में मेरा भी हाथ हो सकता है, हमीद हंसकर बोला। भाई तुम समझे नहीं, एक लंबी चौड़ी औरत की लाश को फड़कने से रोक देना किसी कमजोर आदमी का काम नहीं है। एक ज़िबाह किए हुए मुर्ग को संभालना तक तो मुश्किल हो जाता है, फिर जिस शख्स ने डॉक्टर शौकत को धमकी दी थी वो भी नेपाली ही तो था। ऐसी सूरत में क्यों ना हम इस शक का फायदा उठाएं। मैं ये पक्के तौर पर तो नहीं कह सकता कि कत्ल में सर्कस वाले नेपाली का ही हाथ होगा, फिर भी देख लेने में क्या नुकसान है। अगर कोई सुराग ना मिला तो समझ लो कि सैर ही हो जाएगी। खैर मैं सर्कस देखने से तो इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वहां उसमें तकरीबन 2 दर्जन लड़कियां काम करती हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि वहां खेल के दौरान आप बहस करके मेरा मजा किरकिरा करें। अरे तुम चलो तो सही, मुझे ये मालूम है, फरीदी ने बुझा हुआ सिगार दोबारा सुलगा कर कहा। शहर पहुंचकर उनकी हैरत का कोई ठिकाना न रहा जब उन्होंने इवनिंग न्यूज में निषाद नगर के कत्ल की खबर पढ़ी। उसपे इंस्पेक्टर फरीदी की बातचीत का एक एक शब्द लिखा था, और ये भी लिखा था कि इंस्पेक्टर फरीदी ने निजी तौर पर मौके वारदात का मुआयना किया। लेकिन उन्होंने निजी तौर पर खूनी को ढूंढने से इनकार कर दिया है। साथ ये भी लिखा था कि इंस्पेक्टर फरीदी 6 माह की छुट्टी पर हैं, इसलिए ख्याल होता है कि शायद सरकारी तौर पर भी ये काम उनके जिम्मे ना किया जाएगा। मेरे ख्याल से जिस शख्स को हम लोग डॉक्टर का पड़ोसी समझ रहे थे वो इवनिंग न्यूज का रिपोर्टर था। अब तक तो हालात हमारे ही फेवर में हैं। इस खबर का आज ही छप जाना बहुत अच्छा हुआ। अगर वाकई सर्कस वाला नेपाली ही कातिल है तो हम आसानी से उस पर इस खबर का असर देख सकेंगे, फरीदी ने कहा। हमीद ने कुछ सोचते हुए यूं ही बोला, क्यों क्या कोई नई बात सूझी है, फरीदी ने कहा। मैं कहता हूं आखिर सिरदर्द मोर लेने का क्या फायदा है, क्यों ना हम लोग अपनी अपनी छुट्टियां हंसी खुशी गुजारें। अच्छा बकवास बंद करो, अगर तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते हो तो ना दो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, फरीदी झल्ला कर बोला। अरे आप तो खफा हो गए, मेरा मतलब ये था कि अगर आप भी इस छुट्टी में एक आधा इश्क कर लेते तो अच्छा था, हमीद ने मुंह बनाकर कुछ इस अंदाज में कहा कि फरीदी मुस्कुराए बगैर ना रह सका। अच्छा तो खाना इस वक्त मेरे ही साथ खाना ठीक है, फरीदी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जी सिर आंखों पर, भला मैं अपने अफसर का हुक्म किस तरह टाल सकता हूँ, हमीद ने संजीदगी से कहा। वे दोनों सर्कस शुरू होने से 15 मिनट पहले ही रेलवे ग्राउंड पहुंच गए और बॉक्स के 2 टिकट लेकर रिंग के सबसे करीब वाले सोफे पर जा बैठे। 2-4 खेलों के बाद असली खेल शुरू हुआ। एक नाटे कद का मजबूत नेपाली एक खूबसूरत लड़की के साथ रिंग में दाखिल हुआ।
वाह गजब लौंडिया है, हमीद ने धीरे से कहा।
हमीद की ऐसी बात पर फरीदी ने नेपाली को गौर से घूरने के बाद हमीद को गुस्से में घूरा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ भाइयों और बहनों, रिंग लीडर की आवाज गूंजी, अब दुनिया का सबसे खौफनाक खेल शुरू होने वाला है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये लड़की उस लकड़ी के तख्ते पर लग कर खड़ी हो जाएगी और ये नेपाली अपने खंजर से लड़की के चारों तरफ उसका खाका बनाएगा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नेपाली की जरा सी गलती या लड़की की हल्की सी हरकत उसे मौत की गोद में पहुंचा सकती है भाइयों बहनों। लेकिन देखिए कि ये लड़की मौत का मुकाबला कितनी हिम्मत से करती है और उस नेपाली का हाथ कितना सधा हुआ है, आइए देखते हैं भाइयों बहनों। एक सनसनाता हुआ खंजर लड़की के सिर के बालों को छूता हुआ लकड़ी के तख्ते में 3 इंच धंस गया। लड़की सिर से पैर तक कांप गई। रिंग मास्टर ने नेपाली की तरफ हैरत से देखा और उसके माथे पर कुछ लकीरें दिखने लगी। देखने वालों पर सन्नाटा छा गया। दूसरा खंजर लड़की के कंधे के करीब फ्रॉक के पफ को छेदता हुआ तख्ते में धंस गया। लड़की का चेहरा दूध की तरह सफेद नजर आने लगा। रिंग लीडर परेशान होकर रिंग का चक्कर काटने लगा। नेपाली खड़ा दिसंबर की सर्दी में अपने चेहरे से पसीना पोंछ रहा था।
क्या उस दिन भी ये खंजर जिस्म के इतने करीब लगे थे? फरीदी ने झुककर हमीद से पूछा।
नहीं, हरगिज नहीं, इनकी दूरी 3 या 4 इंच थी, हमीद ने बेताबी से कहा।
अब की बार लड़की के मुंह से चीख निकल गई, उसके बाजू से खून बह रहा था। फरीदी ने नेपाली को शराबियों की तरह लड़खड़ाते हुए रिंग से बाहर जाते देखा। फौरन ही 5-6 जोकरों ने रिंग में आकर उछल कूद मचानी शुरू कर दी।
भाइयों और बहनों,
रिंग मास्टर की आवाज दोबारा गूंजी। इस वाकये पर मुझे हैरत है। ये नेपाली 15-20 बरस से हमारे सर्कस में काम कर रहा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। जरूर वो कुछ बीमार है जिसका हमें पता न था। बहरहाल अभी बहुत से दिलचस्प खेल बाकी हैं।
आओ चले।
फरीदी ने हमीद का हाथ पकड़कर उठते हुए कहा। कई तंबुओं के बीच से गुजरते हुए वे थोड़ी देर बाद मैनेजर के दफ्तर के सामने खड़े हो गए। फरीदी ने चपरासी से अपना विजिटिंग कार्ड अंदर भिजवा दिया। मैनेजर उठकर हाथ मिलाते हुए गर्मजोशी से बोला,
जी कहिए, कैसे तकलीफ फरमाई?
मैं खंजर वाले नेपाली के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ।
क्या कहूँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो खुद हैरत है, आज तक ऐसा वाकया नहीं हुआ। मुझे सख्त शर्मिंदगी है, क्या कानूनन मुझे इसके लिए कोई जवाब देना पड़ेगा? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आज कई दिन से इसकी हालत बहुत खराब है, वो बेहद शराब पीने लगा है, हर वक्त नशे में डींगे मारता है। अभी कल ही अपने एक साथी से कह रहा था कि अब मैं इतना दौलतमंद हो गया हूँ कि मुझे नौकरी की भी परवाह नहीं है। उसने मुझे भी नोटों की गड्डियां दिखाई थी।
उसकी हालत कब से है?
मेरा ख्याल है कि राजरूप नगर में जब पड़ाव था, तभी से हमें इसकी हरकतों में बदलाव नजर आने लगा है।
राजरूप नगर? हमीद ने चौंक कर कहा, लेकिन फरीदी ने उसके पैर पर अपना पैर रख दिया।
आओ,
क्या राजरूप नगर में भी आपकी कंपनी ने खेल दिखाए थे? फरीदी ने पूछा।
जी नहीं, वहाँ कहाँ, वो तो एक कस्बा है, हम लोग वहाँ ठहर कर अपने दूसरे काफिले का इंतजार कर रहे थे।
राजरूप नगर, ये वही तो नहीं जो नवाब वजाहत अली मिर्जा की जागीर है?
जी हाँ वही।
क्या ये नेपाली पढ़ा लिखा है?
जी हाँ, मैट्रिक पास है।
मैं उससे भी कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ।
जरूर, चलिए मेरे साथ चलिए, लेकिन जरा हमारा भी ख्याल रखिएगा, मैं नहीं चाहता कि कंपनी का नाम बदनाम हो।
आप परेशान ना हो, इत्मीनान रखें। वे तीनों तंबुओं की कतारों से गुजरते हुए एक तंबू के सामने चले गए।
अंदर चलिए,
मैनेजर बोला। नहीं, सिर्फ आप जाइए, आप उससे हमारे बारे में कहिएगा, अगर मिलना पसंद करेगा तो ही हम लोग मिलेंगे, वरना नहीं। मैनेजर पहले तो कुछ देर तक हैरत से उन्हें देखता रहा, लेकिन फिर अंदर चला गया। फरीदी ने अपनी आंखें खेमे की जाली से लगा दी। नेपाली अभी तक खेल ही के कपड़े पहने हुए था और बहुत परेशान नजर आ रहा था। मैनेजर के दाखिल होते ही वो उछल कर खड़ा हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर फैली चिंता की लकीरें धीरे धीरे मिटने लगी।
आप हैं? ओ, मैं समझा जी, कुछ नहीं। ओ शाब जी, बहुत शर्मिंदगी है,
वो नशे की हालत में रुक रुक कर बोला।
क्यों, तो क्या तुम किसी और का इंतजार कर रहे थे?
मैनेजर ने कहा।
जी नहीं, बिल्कुल नहीं शाब जी,
वो हकलाने लगा। बाहर फरीदी ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में अजीब किस्म की वहशियाना चमक पैदा हो गई।
शाब जी, माफ कर दो,
नेपाली खुद को संभाल कर बोला।
मैं इस वक्त तुमसे उस मामले में बात करने नहीं आया हूँ, बात दरअसल ये है कि एक साहब तुमसे मिलना चाहते हैं,
मैनेजर बोला। नेपाली बुरी तरह कांपने लगा।
मुझसे मिलना चाहते हैं?
वो बदहवास होकर बैठते हुए हकलाया।
मगर शाब जी, मैं नहीं मिलना चाहता, वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं?
मैं यही बताने के लिए मिलना चाहता हूँ कि मैं तुमसे क्यों मिलना चाहता हूँ, फरीदी ने तंबू में प्रवेश करते हुए कहा। उसके पीछे हमीद भी था। मैं खुफिया पुलिस का इंस्पेक्टर, फरीदी ने जल्दी से कहा।
खुफिया पुलिस?
वो इस तरह बोला जैसे कोई ख्वाब में बड़बड़ाता है।
लेकिन आखिर आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं?
देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन तुम अगर मेरे सवालों का सही सही जवाब दोगे
तो फिर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। क्या तुम कल रात निषाद नगर डॉक्टर शौकत की कोठरी पर गए थे? फरीद ने यह सवाल बहुत ही सादगी से पूछा, लेकिन इसका असर किसी बम के धमाके से कम न था। नेपाली तेजी से उछल पड़ा। फरीदी को अब पूरा यकीन हो गया था। नहीं नहीं, वो कपकपाती हुई आवाज में चीखा, तुम सफेद झूठ बोल रहे हो। मैं वहां क्यों जाता? नहीं, ये झूठ है, पक्का झूठ। इससे कोई फायदा नहीं है मिस्टर, मैं जानता हूं कि कल रात तुम डॉक्टर शौकत को कत्ल करने गए थे और उसके धोखे में सविता देवी को कत्ल करके आए हो। अगर तुम सच सच बता दोगे तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हें वहां किसी दूसरे ने कत्ल करने के लिए भेजा था, फरीदी बोला।
हाँ, आप मुझे बचाने की कोशिश करेगा? ओह खुदा, मैंने तो भयानक गलती किया है शाब जी,
वो बेबसी से बोला। शाबाश, हाँ तो आगे कहो, फरीदी नर्म लहजे में बोला। सर्कस का मैनेजर उन्हें हैरत और खौफ की नजरों से देख रहा था। नेपाली इंस्पेक्टर फरीदी के इस अचानक हमले से पहले ही हथियार डाल चुका था, लेकिन उसने एक बेबस बच्चे की तरह जब कहना शुरू किया तो उसके मुंह से निकला,
जी हाँ शाब जी, मैं जरूर बताऊंगा, मगर मैं बोकुशूर हूँ शाब जी, बोकुशूर हूँ। आपने कहा है आप मुझे बचा लेंगे, उसने मुझे 50,000 रुपया पेश की दिया था और कत्ल करके 50,000 रुपया देने का वादा किया था शाब जी। ओहो, मैंने क्या किया? उसका नाम शाब जी, उसका नाम, वो चीख कर आगे की तरफ झुक गया।
वो देखो,
सार्जेंट हमीद चीखा,
किसी ने तंबू के पीछे से नेपाली पर हमला किया था। खंजर तंबू के कपड़े की दीवार फाड़ता हुआ उसकी पीठ में घुस गया था। एक स्टूल पर बैठे बैठे 2-3 बार वो तड़पा और फिर देखते ही देखते फर्श पर जा गिरा।
हमीद, बाहर देखो, जाने ना पाए, इंस्पेक्टर फरीदी गुस्से में चिल्लाया।
चीख की आवाज सुनकर कुछ और लोग भी भागे। सब ने मिलकर कातिल को तलाश करना शुरू किया, लेकिन बेकार। मैनेजर घबराहट की वजह से बेहोश हो गया था। कोतवाली खबर पहुंचा दी गई। थोड़ी देर बाद कई कांस्टेबल और 2 सब इंस्पेक्टर मौके वारदात पर पहुंचे। इंस्पेक्टर फरीदी को वहां देखकर उन्हें सख्त हैरत हुई। फरीदी ने उन्हें सारा हाल कह बताया। मृतक के इकरारे जुर्म का गवाह मैनेजर था, इसलिए मैनेजर का बयान हो रहा था। इंस्पेक्टर फरीदी और सार्जेंट हमीद का वहां रुकना समय नष्ट करने जैसा था, इसलिए वो दोनों वहां से रवाना हो गए। उनकी कार तेजी से निषाद नगर की तरफ जा रही थी।
क्यों भाई, रहा ना वही 40 रुपए वाले जासूसी नॉवल वाला मामला? फरीदी ने हंसकर कहा।
अब तो मुझे भी दिलचस्पी हो रही है, लेकिन ये तो बताइए कि आपको यकीन कैसे हुआ कि वही कातिल है?
हमीद ने पूछा। यकीन कहां, सिर्फ शक था, शक। लेकिन मैनेजर से बातचीत करने के बाद कुछ यकीन हो चला था कि इस साजिश में किसी दूसरे का हाथ जरूर था। मैं ये भी सोच रहा था कि कत्ल के सिलसिले में अपनी गलती का एहसास हो जाने के बाद ही से उसकी हालत खराब हो गई थी। यही वजह थी कि खेल के वक्त उसका हाथ बहक रहा था, और अब उसे शायद उस आदमी का इंतजार था जिसने उसे कत्ल के लिए बहकाया था। इस गलती की जवाबदेही के ख्याल ने उसे और भी परेशान कर रखा था। इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखकर मैंने खुद पहले उसके तंबू में जाना ठीक नहीं समझा। मैनेजर को अंदर भेजकर मैं जाली से उसके हाव भाव देखने लगा। अरे जाली से तो तुम भी देख रहे थे ना।
बहरहाल आज से तो मैं आपका पूरा पूरा शागिर्द हो गया, हमीद ने कहा।
क्या कहा, आज से? पहले नहीं थे क्या? फरीदी ने हंसकर पूछा।
अरे नहीं नहीं, मतलब पहले भी था, हमीद ने जवाब दिया, और दोनों खामोश हो गए।
इंस्पेक्टर फरीदी आगे के लिए प्रोग्राम बना रहा था। फाटक पर कार की आवाज सुनकर डॉक्टर शौकत बाहर निकल आए थे। इंस्पेक्टर फरीदी ने सारी कहानी उसे बता दी। फिर फरीदी ने शौकत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा असली दुश्मन अब भी आजाद है और वो किसी भी वक्त तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए अब तुमको सावधान रहने की जरूरत है। मैं कोशिश करूंगा कि असली मुजरिम को बहुत जल्दी गिरफ्तार करके कानून के हवाले कर दूं। इंस्पेक्टर फरीदी को अफसोस था कि सरकारी तौर पर वो इस केस का इंचार्ज नहीं हो सकता था।
अभी उसकी छुट्टी खत्म होने में 2 महीने बाकी थे। उसे इस बात का भी ख्याल था कि दूसरे कत्ल के बाद से इस मामले में उसकी दखलअंदाजी का हाल अफसरों को जरूर मालूम हो जाएगा, जो कि किसी तरह मुनासिब नहीं था। लेकिन उसने इसकी परवाह न की। नौकरी की परवाह ना उसे कभी पहले थी और ना ही अब थी। यह नौकरी वो शौकिया किया करता था, वरना वो इतना दौलतमंद था कि इसके बगैर भी अमीरों की सी जिंदगी गुजार सकता था। दूसरी वारदात के अगले दिन जब वो सुबह सोकर उठा तो उसे मालूम हुआ कि चीफ इंस्पेक्टर साहब का अर्दली बहुत देर से उसका इंतजार कर रहा था। पूछने पर पता चला कि चीफ साहब अपने बंगले पर बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं और पुलिस कमिश्नर साहब भी वहां मौजूद हैं। फरीदी का माथा ठनका, लेकिन फौरन ही उसने बेकार के ख्यालों को अपने जहन से निकाल फेंका और नाश्ता करने के बाद चीफ साहब के बंगले की तरफ निकल पड़ा।
हेलो फरीदी, हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे,
चीफ साहब ने उसको देखते हुए तपाक से कहा। सलाम, माफ करें मुझे जरा देर हो गई, फरीदी ने कहा।
इस वक्त एक अहम मामले पर बातचीत करने के लिए आपको तकलीफ दी गई है,
पुलिस कमिश्नर ने अपना सिगार केस उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा।
शुक्रिया, फरीदी ने सिगार लेते हुए कहा,
फरमाइए।
मिस्टर फरीदी, 24 घंटे के अंदर इस इलाके में 2 वारदातें हुई हैं और उनसे आप बखूबी वाकिफ हैं,
पुलिस कमिश्नर साहब ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा।
और ये भी जानते हैं कि ट्रांसफर होकर यहाँ आए हुए मुझे सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं। ऐसी सूरत में मेरी बहुत बदनामी होगी, और आप तो जानते ही हैं कि सिविल पुलिस तो बिल्कुल नाकारा है और मामला पेचीदा है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपनी बाकी की छुट्टियां फिलहाल कैंसिल करवा दें और इसका जिम्मा मैं लेता हूँ, कि कातिल का पता लग जाने के बाद मैं आपको 2 की बजाय 4 महीने की छुट्टी दिला दूंगा। ये मेरी दोस्ताना राय है, इससे अफसरी और महकमे का कोई ताल्लुक नहीं।
जी, मैं तो हर वक्त और हर तरह की खिदमत के लिए हाजिर हूँ, फरीदी ने अपनी आरजू पूरी होते हुए मन ही मन खुश होते हुए कहा।
बहुत बहुत शुक्रिया, पुलिस कमिश्नर साहब इत्मीनान की सांस लेकर बोले। कल रात आप अपना बयान देकर चले गए थे, इसके बाद नेपाली के तंबू की तलाशी लेने पर 40,000 रुपये के नोट बरामद हुए, जो उसकी हैसियत से कहीं ज्यादा थे। इन रुपयों के अलावा कोई और ऐसी चीज न मिल सकी जिससे उसके कातिल का पता लग सकता। बहरहाल, सविता देवी के कातिल के सुराग का सिहरा तो अब आपके ही सिर है, लेकिन अब उसके कातिल के कातिल का पता लगाना बहुत जरूरी है, और ये काम सिवा आपके कोई नहीं कर सकता। मैंने कल रात ही ये केस डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जिम्मे कर दिए हैं, और इसके आगे का प्रोग्राम आपको चीफ इंस्पेक्टर साहब बताएंगे, और मैं तुमको इन केसेस का इंचार्ज बनाता हूँ,
चीफ इंस्पेक्टर साहब ने, जो अब तक दोनों की बातें गौर से सुन रहे थे, आगे कहा।
इसके कागजात 10 बजे तक तुम्हें मिल जाएंगे।
ये तो आप जानते ही हैं कि मैं शुरू से ही इस केस की तफ्तीश कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर फरीदी ने कहा, और मैंने इस सिलसिले में अपना काम करने का तरीका भी ढूंढ लिया है, लेकिन आपसे ये गुजारिश है कि आप यही जाहिर होने दें कि मैं छुट्टी पर हूं, और ये मामला अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन तक नहीं पहुंचा है।
तो इस केस में भी तुम अपनी पुरानी आदत के मुताबिक अकेले ही काम करोगे? यह आदत खतरनाक है,
चीफ इंस्पेक्टर साहब ने कहा। मुझे अफसोस है कि कुछ कारणों के चलते मैं ये जाहिर नहीं करना चाहता, और मुझे यही तरीका अपनाना पड़ेगा। अच्छा, अब इजाजत चाहता हूँ, सलाम। इंस्पेक्टर फरीदी के घर पर सार्जेंट हमीद उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों से मालूम हो रहा था कि वो रात भर नहीं सोया है। फरीदी के घर पहुंचते ही बेताबी से वो उसकी तरफ बढ़ा।
कहो, खैरियत तो है? कुछ परेशान मालूम होते हो,
फरीदी ने कहा।
कुछ क्या, मैं बहुत परेशान हूँ, हमीद ने कहा।
आखिर क्या बात है?
कल रात तकरीबन 1 बजे मैं आपके घर से रवाना हुआ। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने महसूस किया कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। पहले तो ख्याल हुआ कि कोई राहगीर होगा, लेकिन जब मैंने अपना शक दूर करने के लिए यूं ही बेमतलब गलियों में घुसना शुरू किया तो मेरा शक यकीन की हद तक पहुंच गया, क्योंकि वो अब भी मेरा पीछा कर रहा था। खैर, मैंने घर पहुंचकर ताला खोला और किवाड़ बंद करके उसकी झिरी से झांकता रहा। मेरा पीछा करने वाला अब मेरे मकान के सामने खड़ा दरवाजे की तरफ देख रहा था। फिर वो आगे बढ़ गया, मैं दबे पांव बाहर निकला और अब मैं उसका पीछा कर रहा था। इस किस्म का पीछा कम से कम मेरे लिए तो नया तजुर्बा था, क्योंकि पीछा करते करते 5 बज गए। ऐसा मालूम होता था जैसे वो यूं ही आवारा गर्दी करता फिर रहा हो। मुझे अफसोस है कि मैं उसका चेहरा ना देख सका, क्योंकि उसने अपने चेस्टर का कॉलर खड़ा कर रखा था और उसकी नाइट कैप उसके चेहरे पर झुकी हुई थी। तकरीबन 5 बजे वो बॉटम रोड और बेली रोड के चौराहे पर रुक गया। वहां एक कार खड़ी थी, वो उसमें बैठा और कार तेजी से उत्तर की तरफ रवाना हो गई। वहां उस वक्त मुझे कोई सवारी ही नहीं मिली, इसलिए 3 मील पैदल चलकर आ रहा हूं। रात से अब तक मैंने शायद 15 मील का चक्कर लगाया होगा।
वाह, तुम्हारी नई कहानी तो बहुत दिलचस्प है, फरीदी ने कुछ सोचते हुए कहा।
फिर वो थोड़ी देर तक चुप रहा, उसकी आंखें इस तरह धुंधला गईं जैसे उसे नींद आ रही हो। फिर अचानक उनमें एक वहशियाना चमक पैदा हो गई और वह जोरदार कहकहा लगाने लगा।
क्या कहा तुमने? वो बॉटम रोड के चौराहे से उत्तर की तरफ चला गया, फरीदी बोला।
जी हाँ,
और तुम्हें शायद मालूम ना होगा कि इसी चौराहे से अगर तुम दक्षिण की तरफ चलो तो 15 मील चलने के बाद तुम राजरूप नगर पर पहुंच जाओगे।
अब मुझे यकीन हो गया है कि कातिल का सुराग राजरूप नगर में ही मिल सकेगा। देखो, अगर वो सचमुच तुम्हारा पीछा कर रहा होता तो तुम्हें इसका एहसास तक ना होने देता। उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि तुम उसके पीछे लग जाओ और वो उसी चौराहे से दक्षिण की तरफ जाने की बजाय उत्तर की तरफ जाकर मेरे दिल से उस ख्याल को निकाल दे कि असली मुजरिम राजरूप नगर का रहने वाला है।
ओ, मेरे खुदा,
तो इसका मतलब ये है कि वो नेपाली के कत्ल के पहले से वो हम लोगों के करीब रहा है और उसने मैनेजर के दफ्तर में भी हमारी बातचीत सुनी है। वहीं राजरूप नगर की बात आई थी, वहीं। अखबार में तो इसका हवाला तक नहीं था। मुजरिम मामूली दिमाग का आदमी मालूम नहीं होता, क्या तुम उसका हुलिया बता सकते हो?
अरे ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा।
लेकिन ठहरिए, उसमें खास बात थी जिसके बिना पर उसे पहचाना जा सकता है। उसकी पीठ पर एक बड़ा सा कुबड़ था।
अरे अमा छोड़ो भी, कुबड़ काबड़ ये सब कोट के नीचे बहुत सारा कपड़ा ठूंस कर बनाया जा सकता है। अगर वो सचमुच कुबड़ा होता तो तुम्हें पीछे आने की दावत ही ना देता। वल्लाह, आपने तो जेम्स बॉन्ड के भी कान काट लिए, हमीद हंस कर बोला। अरे तुमने फिर वही जासूसी नॉवलों के जासूसों का हवाला देना शुरू कर दिया क्या यार? हमीदी ने बुरा सा मुंह बनाया।
अरे सच में, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं।
खैर हटाओ,
मैं इस वक्त राजरूप नगर जा रहा हूं, समझे?
ये आपने बहुत अच्छा किया कि आप अकेले राजरूप नगर जा रहे हैं, मैं यहां रात भर नहीं सोया। अरे अगर तुम सोते भी होते तो भी मैं तुम्हें साथ लेकर ना जाता, क्योंकि तुम छुट्टी पर हो और मैंने अपनी छुट्टियां कैंसिल करवा दी हैं और ये केस सरकारी तौर पर मुझे दिया गया है।
हाँ, कब से? हमीद ने हैरान होकर पूछा।
बस अभी अभी, फरीदी ने जवाब दिया और सारी बात बता दी।
तो फिर आप वाकई अकेले जाएंगे?
अरे अच्छा ये तो बताइए कि आपने अपने काम करने का तरीका सोच लिया है, हमीद ने पूछा।
बिल्कुल,
फरीदी ने जवाब दिया। कल रात मैंने तुम्हारे जाने के बाद ही राजरूप नगर के सिलसिले में बहुत सी जानकारी हासिल की है, जैसे कि राजरूप नगर नवाब साहब वजाहत मिर्जा की जागीर है और नवाब साहब बहुत ज्यादा दिमागी तौर पर बीमार हैं। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि वे तकरीबन 15 रोज से दिन रात सो रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहना चाहिए कि बेहोश हैं। उनके फैमिली डॉक्टर की राय है कि सिर का ऑपरेशन करवाया जाए, लेकिन उनका इलाज इस समय कर्नल तिवारी कर रहे हैं जो पुलिस अस्पताल के इंचार्ज हैं, और वो ऑपरेशन के बिल्कुल खिलाफ हैं। इस सिलसिले में जो दूसरी बात मालूम हुई है वो ये है कि नवाब साहब की अपनी कोई औलाद नहीं है, उनके साथ उनका सौतेला भतीजा और उनकी बेवा बहन की जवान लड़की साथ रहती है। मुझे जहां तक पता चला है कि नवाब साहब ने अपनी जागीर के सिलसिले में भी अभी तक किसी तरह का कोई वसीयतनामा तय नहीं किया है।
क्या ये मुमकिन नहीं कि उनकी बेवा बहन या सौतेले भतीजे में से कोई भी इस जायदाद के लालच में
ये ख्वाहिश नहीं रख सकता कि नवाब साहब होश में आने से पहले ही मर जाएं। हो सकता है कि उसी मकसद के तहत दिमागी बीमारियों के मशहूर डॉक्टर शौकत को कत्ल करवा देने की कोशिश की गई हो, महज इस डर से कि कहीं नवाब साहब उससे इलाज ना करवाने लगे, क्योंकि उनका फैमिली डॉक्टर ऑपरेशन पर जोर दे रहा है। फरीदी इतना कहकर खामोश हो गया। भाई आपकी दलील में दम तो है,
लेकिन आपका वहां अकेले जाना ठीक नहीं है,
हमीद बोला। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो कि मैं अपने तरीके से काम करने का आदी हूँ, और वो भी बिल्कुल अकेला। और फिर तुमने अभी हाल ही में तो इश्क किया है भाई, मैं तुम्हारे इश्क में गड़बड़ नहीं पैदा करना चाहता। वापसी में तुम्हारी महबूबा के लिए एक अंगूठी जरूर लेता आऊंगा। अच्छा अब तुम नाश्ता करके यहीं सो रहो और मैं चला।